नमस्ते दोस्तों, मैं प्रोफेसर सुभाष, हिंदी विभाग कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र से आज आपके साथ साझा कर रहा हूं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध काव्य और प्रकृति। दोस्तों, काव्य में, साहित्य में प्रकृति हमेशा ही एक महत्वपूर्ण विषय रही है। चाहे किसी भी भाषा का साहित्य हो, प्रकृति का उसमें विभिन्न प्रकार से वर्णन हुआ है। संस्कृत साहित्य में भी, हिंदी साहित्य में भी प्रकृति एक मुख्य विषय के तौर पर साहित्य में आती रही है। साहित्य में प्रकृति किन किन रूपों में आती है और किस तरह से साहित्यकार, रचनाकार प्रकृति को प्रस्तुत करते हैं, कैसे वे साहित्य में अभिव्यक्त होने के माध्यम बनती है, तो इस संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काव्य और प्रकृति के अंतः संबंधों का, परस्पर के संबंधों का सूक्ष्मता से वर्णन किया है इस निबंध में। तो प्रस्तुत है दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध काव्य और प्रकृति। कवि कर्म विधान के दो पक्ष होते हैं, विभाव पक्ष और भाव पक्ष। कवि एक ओर तो ऐसी वस्तुओं का चित्रण करता है जो मन में कोई भाव उठाने या उठे हुए भाव को और जमाने में समर्थ होती है, और दूसरी ओर उन वस्तुओं के अनुरूप भावों के अनेक स्वरूप शब्दों द्वारा व्यक्त करता है। एक विभाव पक्ष है, दूसरा भाव पक्ष। कहने की आवश्यकता नहीं कि काव्य में ये दोनों अन्योन्याश्रित हैं, अतः दोनों रहते हैं। जहां एक ही पक्ष का वर्णन रहता है, वहां भी दूसरा पक्ष अव्यक्त रूप में रहता है। जैसे नायिका के रूप या नक्शिक का कोरा जैसे नायिका के रूप या नक्शिक का कोरा वर्णन लें तो उसमें भी आश्रय का रतिभाव अव्यक्त रूप में वर्तमान रहता है। पर काव्य में विभाव ही मुख्य है। भावों के प्रकृत आधार या विषय का कल्पना द्वारा पूर्ण और यथातथ्य प्रत्यक्षीकरण कवि का सबसे पहला और सबसे आवश्यक काम है। जैसा पहले कहा जा चुका है, इसके अंतर्गत दो पक्ष होते हैं, एक आलंबन यानी भाव का विषय, दूसरा आश्रय यानी भाव का अनुभव करने वाला। इनमें से प्रथम तो मनुष्य से लेकर कीट, पतंग, वृक्ष, नदी, पर्वत आदि सृष्टि का कोई भी पदार्थ हो सकता है, किंतु दूसरा हृदय संपन्न मनुष्य ही होता है। प्राचीन कविगण इन दोनों का स्वरूप प्रतिष्ठित करने में, इनका बिंब ग्रहण कराने में कल्पना का पूरा पूरा उपयोग करते थे। वाल्मीकि रामायण को मैं आर्य काव्य का आदर्श मानता हूँ। उसमें राम के रूप, गुण, शील, स्वभाव तथा रावण की विरूपता, अनीति, अत्याचार आदि का पूरा चित्रण तो मिलता ही है, साथ ही अयोध्या, चित्रकूट, दंडकारण्य आदि का चित्र भी पूरे ब्यौरे के साथ सामने आता है। इन स्थलों के वर्णन में हमें हाट, बाट, वन, पर्वत, नदी, निर्झर, ग्राम, जनपद इत्यादि न जाने कितने पदार्थों का प्रत्यक्षीकरण मिलता है। साहित्य के आचार्यों की दृष्टि में वन, उपवन, ऋतु आदि श्रृंगार के उद्दीपन मात्र हैं। वे केवल नायक या नायिका को हंसाने या रुलाने के लिए हैं। जब यही बात है, तब फिर इनका संश्लिष्ट चित्रण करके श्रोता को बिंब ग्रहण कराने से क्या प्रयोजन? उनके नाम गिनाकर अर्थ ग्रहण करा दिया, बस हो गया। पर सोचने की बात है कि क्या प्राचीन कवियों ने इनका वर्णन इसी रूप में किया है? क्या विश्व हृदय वाल्मीकि ने वनों और नदियों का वर्णन इसी उद्देश्य से किया है? क्या महाकवि कालिदास ने कुमार संभव के आरंभ में ही हिमालय का जो विशद वर्णन किया है, वह केवल श्रृंगार के उद्दीपन की दृष्टि से? कभी नहीं। ये वर्णन पहले तो प्रसंग प्राप्त हैं, अर्थात आलंबन की परिस्थिति को अंकित करने वाले हैं। इनके बिना आश्रय और आलंबन शून्य में खड़े मालूम होते हैं। पर इस पर यों गौर कीजिए, राम और लक्ष्मण के दो चित्र आपके सामने हैं, एक में केवल दो मूर्तियों के अतिरिक्त और कुछ नहीं है और दूसरे में पयस्विनी के द्रुम लताच्छादित तट पर पर्णकुटी के सामने दोनों भाई बैठे हैं। इनमें से दूसरा चित्र परिस्थिति को लिए हुए है, इसी से उसमें हमारे भावों के लिए अधिक विस्तृत आलंबन है। हमारी परिस्थिति हमारे जीवन का आलंबन है, अतः उपचार से वह हमारे भावों का भी आलंबन है। उसी परिस्थिति में, उसी संसार में, उन्हीं दृश्यों के बीच जिनमें हम रहते हैं, राम लक्ष्मण को पाकर हम उनके साथ तादात्म्य संबंध का अधिक अनुभव करते हैं, जिससे साधारणीकरण पूरा पूरा होता है। पर प्राकृतिक वर्णन केवल अंग रूप से ही हमारे भावों के आलंबन नहीं है, स्वतंत्र रूप में भी है। जिन प्राकृतिक दृश्यों के बीच हमारे आदिम पूर्वज रहे और अब भी मनुष्य जाति का अधिकांश अपनी आयु व्यतीत करता है, उनके प्रति प्रेम भाव पूर्व साहचर्य के प्रभाव से संस्कार या वासना के रूप में हमारे अंतःकरण में निहित है। उनके दर्शन या काव्य आदि में प्रदर्शन से हमारी भीतरी प्रकृति का जो अनुरंजन होता है, वह अस्वीकृत नहीं किया जा सकता। इस अनुरंजन को केवल किसी दूसरे भाव का आश्रित या उत्तेजक कहना अपनी जड़ता का ढिंढोरा पीटना है। जो प्राकृतिक दृश्यों को केवल कामोद्दीपन की सामग्री समझते हैं, उनकी रुचि भ्रष्ट हो गई है और संस्कार सापेक्ष है। मैंने पहाड़ों पर या जंगलों में घूमते समय बहुत से ऐसे साधु देखे हैं जो लहराते हुए हरे भरे जंगलों, स्वच्छ शिलाओं पर चांदी से ढलते हुए झरनों, चौकड़ी भरते हुए हिरणों और जल को झुककर चूमती हुई डालियों पर कलरव कर रहे विहंगों को देख मुग्ध हो गए हैं। काले मेघ जब अपनी छाया डालकर चित्रकूट के पर्वतों को नील वर्ण कर देते हैं, तब नाचते हुए नील कंठों को देखकर सभ्यता अभिमान के कारण शरीर चाहे न नाचे पर मन अवश्य नाचने लगता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि ऐसे दृश्यों को देखकर हर्ष होता है। हर्ष एक संचारी भाव है, इसलिए यह मानना पड़ेगा कि उसके मूल में रतिभाव वर्तमान है और वह रतिभाव उन दृश्यों के प्रति है। रीति ग्रंथों की बदौलत रस दृष्टि परिमित हो जाने से उसके संयोजक विषयों में से कुछ तो उद्दीपन में डाल दिए गए और कुछ भाव क्षेत्र से ही निकाले जाकर अलंकार के हाथे में हाँक दिए गए। इसी व्यवस्था के अनुसार वस्तुओं के स्वाभाविक रूप और क्रिया का वर्णन स्वभावोक्ति अलंकार हो गया। जैसे लड़कों का खेलना, चीते का पूंछ पटक कर झपटना, हाथी का गंडस्थल रगड़ना इत्यादि। पर मैं इन्हें प्रस्तुत विषय मानता हूँ, जिन पर अप्रस्तुत विषयों का उत्प्रेक्षा आदि द्वारा आरोप हो सकता है। वात्सल्य रीति भाव के प्रदर्शन में यदि बच्चे की क्रीड़ा का वर्णन हो तो क्या वह अलंकार मात्र होगा? प्रस्तुत वर्ण्य विषय अलंकार नहीं कहा जा सकता, वह स्वयं रस के संयोजकों में से है, उसकी शोभा मात्र बढ़ाने वाला नहीं। मैं अलंकार को केवल वर्णन प्रणाली मात्र मानता हूँ, जिसके अंतर्गत करके किसी वस्तु का वर्णन किया जा सकता है। वस्तु निर्देश अलंकार का काम नहीं। इस दृष्टि से कई अलंकार ऐसे हैं जिन्हें अलंकार न कहना चाहिए, जैसे स्वभावोक्ति, अतिशोक्ति से भिन्न अत्युक्ति, उद्दात इत्यादि। सारांश यह है कि स्वभावोक्ति अलंकार नहीं है और इसी से उसका ठीक ठाक लक्षण भी नहीं स्थिर हो सका। कुछ लोग अलंकार का बहुत व्यापक अर्थ लेने लगे हैं। इन सब बातों का विस्तृत विवेचन फिर कभी किया जाएगा। मनुष्य शेष प्रकृति के साथ अपने रागात्मक संबंध का विच्छेद करने से अपने आनंद की व्यापकता को नष्ट करता है। बुद्धि की व्याप्ति के लिए मनुष्य को जिस प्रकार विस्तृत और अनेक रूपात्मक क्षेत्र मिला है, उसी प्रकार भावों की व्याप्ति के लिए भी। अब यदि आलस्य या प्रमाद के कारण मनुष्य इस द्वितीय क्षेत्र को संकुचित कर लेगा तो उसका आनंद पशुओं के आनंद से विशाल किसी प्रकार नहीं कहा जा सकेगा। अतः यह सिद्ध हुआ कि वन, पर्वत, नदी, निर्झर, पशु पक्षी, खेत बारी इत्यादि के प्रति हमारा प्रेम स्वाभाविक है या कम से कम वासना के रूप में अंतःकरण में निहित है। पर प्रेम की प्रतिष्ठा दो प्रकार से होती है, सुंदर रूप के अनुभव द्वारा और साहचर्य द्वारा। सुंदर रूप के आधार पर जो प्रेम भाव या लोभ प्रतिष्ठित होता है, उसका हेतु संलक्ष्य होता है, और जो केवल साहचर्य के प्रभाव से अंकुरित और पल्लवित होता है, वह एक प्रकार से हेतु ज्ञान शून्य होता है यदि हम किसी किसान को उसकी झोंपड़ी से हटाकर किसी दूर देश में ले जाकर राजभवन में टिका दें, तो वह उस झोंपड़ी का, उसके छप्पर पर चढ़ी हुई कुम्हड़े की बेल का, सामने के नीम के पेड़ का, द्वार पर बंधे हुए चौपायों का ध्यान करके आंसू बहाएगा। वह यह कभी नहीं समझता कि मेरा झोंपड़ा इस राजभवन से सुंदर था, परंतु फिर भी झोंपड़े का प्रेम उसके हृदय में बना हुआ है। यह प्रेम रूप सौंदर्यगत नहीं है, सच्चा स्वाभाविक और हेतु ज्ञान शून्य प्रेम है। इस प्रेम को रूप सौंदर्यगत प्रेम नहीं पहुंच सकता। इससे यह स्पष्ट है कि अपने सुख विलास के अथवा शोभा और सजावट की अपनी रचनाओं के आदर्श को लेकर जो प्रकृति के क्षेत्र का अवलोकन करते हैं और अपना प्रेमानंद केवल इन शब्दों में प्रकट करते हैं, क्या कैसे लाल पीले और सुंदर फूल खिले हैं, पेड़ किस प्रकार यहाँ से वहाँ तक एक पंक्ति में चले गए हैं, लताओं का कैसा सुंदर मंडप सा बन गया है, कैसी शीतल मंद सुगंध हवा चल रही है, उसका प्रेम कोई प्रेम नहीं, उसे अधूरा समझना चाहिए। वे प्रकृति के सच्चे उपासक नहीं, वे तमाशबीन हैं और केवल अनोखापन, सजावट या चमत्कार देखने निकलते हैं। उनका हृदय मनुष्य प्रवर्तित व्यापारों में पड़कर इतना कुंठित हो गया है कि उसमें उन सामान्य प्राकृतिक परिस्थितियों में, जिनमें अत्यंत आदिम कल्प में मनुष्य जाति ने अपना जीवन व्यतीत किया था, तथा उन प्राचीन मानव व्यापारों में जिनमें वन्य दशा से निकलकर वह अपने निर्वाह और रक्षा के लिए लगी लीन होने की वृत्ति दब गई, अथवा यूं कहिए कि उनमें करोड़ों पीढ़ियों को पार करके आने वाली अंत संज्ञावर्तनी वह अव्यक्त स्मृति नहीं रह गई जिसे वासना या संस्कार कहते हैं। वे तड़क भड़क सजावट, रंगों की चमक दमक, कलाओं की बारीकी पर भले ही मुग्ध हो सकते हों, पर सच्चे सहृदय नहीं कहे जा सकते। कंकरीले टीलों, ऊसर पटपरों, पहाड़ के ऊबड़ खाबड़ किनारों या बबूल करौंदों के झाड़ों में क्या आकर्षित करने वाली कोई बात नहीं होती? जो फारस की चाल के बगीचों के गोल चुखटे कटाव, सीधी सीधी रविशें, मेहंदी के बने भद्दे हाथी घोड़े, काट छांट कर सुडोल किए हुए सरों के पेड़ों की कतारें, एक पंक्ति में फूले हुए गुलाब आदि देखकर ही वाह वाह करना जानते हैं, उनका साथ सच्चे भावुक सहृदयों का वैसा ही दुखदायी होगा जैसा सज्जनों का खलों का, जैसा सज्जनों को खलों का। हमारे प्राचीन पूर्वज भी उपवन और वाटिकाएं लगाते थे, पर उनका आदर्श कुछ और था। उनका आदर्श वही था जो अब तक चीन और यूरोप में थोड़ा बहुत बना हुआ है। आजकल के पार्कों में हम भारतीय आदर्श की छाया पाते हैं। हमारे यहाँ के उपवन वन के प्रतिरूप ही होते थे, जो वनों में जाकर प्रकृति का शुद्ध स्वरूप और उसकी स्वच्छंद क्रीड़ा नहीं देख सकते थे, वे उपवनों में ही जाकर उनका थोड़ा बहुत अनुभव कर लेते थे। वे सर्वत्र अपने को ही नहीं देखना चाहते थे। पेड़ों को मनुष्य की कवायद करते देखकर ही जो मनुष्य प्रसन्न होते हैं, वे अपना ही रूप सर्वत्र देखना चाहते हैं। अहंकारवश अपने से बाहर प्रकृति की ओर देखने की इच्छा नहीं करते। काव्य का जो चरम लक्ष्य सर्वभूत को आत्मभूत करके अनुभव कराना है, उसके साधन से भी अहंकार का त्याग आवश्यक है। जब तक इस अहंकार से पीछा न छूटेगा, तब तक प्रकृति के सब रूप मनुष्य की अनुभूति के भीतर नहीं आ सकते। दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो प्रकृति को काव्य में किस तरह से आता है, इसका वर्णन करते हुए कितनी शानदार बात उन्होंने कही। प्रकृति का आनंद लेने के लिए हमें अहंकार मिटाना होता है। यदि हम प्रकृति में भी अपना ही रूप देखना चाहते हैं और उस पर मुग्ध होते हैं, तो हम उस आदिम रूप प्रकृति को और प्रकृति की सुंदरता को सही मायनों में आनंदित नहीं हो सकते। प्रकृति का साथ, मनुष्य का प्रकृति के साथ साथ बहुत आदिम समय से ही है, काव्य का जो चरम लक्ष्य सर्वभूत को आत्मभूत करा के अनुभव कराना है, उसके साधन में भी अहंकार का त्याग आवश्यक है। काव्य का जो चरम लक्ष्य, कि काव्य का चरम लक्ष्य क्या है, सर्वभूत को आत्मभूत करा के अनुभव कराना, कि जो पूरा परिवेश है उसको किस तरह से आत्मभूत करें, किस तरह से हमारे आंतरिक जगत में वो जाएगा, हमारे अनुभव का हिस्सा कैसे बनेगा जो बाहर हो रहा है, यही काव्य का चरम लक्ष्य है अनुभव के माध्यम से। और जब हम सर्वभूत को या बाहरी जगत को आंतरिक जगत के साथ उसका तालमेल करना चाहते हैं तो हमें आत्मविस्तार करना पड़ता है, अहंकार को त्याग करना पड़ता है। और अहंकार का त्याग, उसके बिना आप संसार को, दुनिया को, प्रकृति को, साहित्य को, किसी भी चीज़ को समझ नहीं सकते। इसीलिए हमारे संतों, भक्तों ने, महात्माओं ने, महापुरुषों ने अहंकार के त्याग को एक मानव मूल्य के तौर पर प्रतिष्ठित किया। अहंकार, कबीर ने भी कहा, अहम, अहंकार का त्याग। जब तक इस अहंकार से पीछा न छूटेगा तब तक प्रकृति के सब रूप मनुष्य की अनुभूति के भीतर नहीं आ सकते। जो प्रकृति के सब रूप हैं वो मनुष्य के भीतर नहीं आ सकते। और जब तक प्रकृति के सब रूप भीतर नहीं आ सकते तब तक मनुष्य का विस्तार संभव नहीं। इसलिए ये जो आत्मविस्तार है, ये अहंकार एक गेटकीपर की तरह से है जो बाहरी चीज़ों को अपने अंदर जाने से रोकता है। इसलिए अहंकार का त्याग मनुष्य के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये निबंध पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और निबंध के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।